स्वागत है आपका दिनभर में। आज है नए साल का पहला दिन और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। विभाजन के करीब पहुंचा समाजवादी पार्टी का अंदरूनी संघर्ष। पिता मुलायम सिंह को नजरअंदाज कर अखिलेश ने खुद को घोषित किया पार्टी अध्यक्ष।
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है।
मुलायम और अखिलेश खेमे में बढ़ चुकी समाजवादी पार्टी में किसे मिलेगा पार्टी का चुनाव चिन्ह, अब संभवतः चुनाव आयोग करेगा फैसला। वर्षांत कार्यक्रमों की कड़ी में आज सुनिए खेल के मैदान पर साल 2016 में किन खिलाड़ियों का रहा जलवा।
बहुत फॉट किया था पर कैरोलिना भी बहुत अच्छा खेली एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट हर एंड व्हेन इट कम्स टू द फाइनल्स इट वाज लाइक एनीबॉडीज गेम फर्स्ट ओलंपिक्स। और
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी में तकरार जारी है। महासचिव रामगोपाल यादव की ओर से आज लखनऊ में बुलाए गए राष्ट्रीय अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया गया और मुलायम सिंह यादव के लिए संरक्षक की भूमिका तय की गई। इस अधिवेशन में शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और राज्यसभा सांसद अमर सिंह को पार्टी से निकालने का फैसला किया गया। इसके कुछ देर बाद मुलायम सिंह ने एक पत्र जारी कर इस सम्मेलन को असंवैधानिक बताया। उन्होंने रामगोपाल यादव को 3 दिन में दूसरी बार पार्टी से निकालने का फैसला सुनाया। मुलायम सिंह ने 5 जनवरी को राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया है। तुर्की की पुलिस इस्तांबुल के नाइट क्लब पर हमला करने वाले व्यक्ति की तलाश कर रही है। तुर्की के गृहमंत्री के मुताबिक इस हमले में 39 लोगों की मौत हो गई जिनमें से कम 15 विदेशी हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रचप तैयब अर्दोआन ने हमले की निंदा करते हुए इसे गड़बड़ी फैलाने की कोशिश बताया है। इंडोनेशिया के अधिकारियों के मुताबिक पर्यटकों को लेकर जा रही एक नाव में आग लगने से 23 लोगों की मौत हो गई। इस नाव में करीब 230 पर्यटक सवार थे, इनमें से कई लोगों को बचा लिया गया है। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। टीवी पर प्रसारित तस्वीरों में नाव को जलते हुए दिखाया गया है। नाव में सवार आरडी नाम के एक यात्री ने बताया कि सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। उन्होंने कहा,
दारी दरमगा तारी काली आदम की तनाई, कमोडियन मामुनुजु को पुलों तीरों।
तेजी से धुआं उठा और नाव का केबिन धुएं से गिर गया। सभी यात्री परेशान हो गए और डेक पर पहुंच गए। पल भर में आग तेज हो गई। आग उस तरफ से बढ़ रही थी जहां तेल रखा था। ये थे नाव में सवार यात्री यार्डी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराक से मिली खबरों के मुताबिक इस्लामिक स्टेट समूह ने नजफ शहर के पास एक सुरक्षा पोस्ट को निशाना बनाया। इस हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। इस्लामिक स्टेट के मुताबिक हमला उसके 5 लड़ाकों ने किया। इराक के अधिकारियों के मुताबिक चरमपंथी एक बम से लैस कार को लेकर नजफ में दाखिल होने की कोशिश में थे लेकिन एक चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस ने उन्हें रोक लिया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन का कहना है कि उनका देश परमाणु हथियार ले जाने और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम मिसाइल बनाने के आखिरी चरण में है। उत्तर कोरिया ने पिछले साल 2 परमाणु परीक्षण किए थे। इन परीक्षणों की पूरी दुनिया ने निंदा की थी और उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध भी लगाए गए थे। नए साल के मौके पर टीवी पर प्रसारित भाषण में किम ने कहा कि साल 2016 में उत्तर कोरिया ने परमाणु शक्ति के रूप में अहम छलांग लगाई। उन्होंने कहा, हथियार उपकरणों को लेकर शोध और विकास का काम तेजी से जारी है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट लॉन्च की तैयारी आखिरी चरण में है। ये थे किम जोंग उनके शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। हांगकांग में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने नए साल के मौके पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए जाने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए 4 प्रतिनिधियों को कोर्ट के जरिए अयोग्य ठहराने की सरकार की कोशिश का भी विरोध कर रहे हैं। सरकार का तर्क है कि इन 4 प्रतिनिधियों ने अवैध तरीके से शपथ ली थी। हालांकि एक प्रदर्शनकारी ने बीबीसी से कहा कि वो मानते हैं कि कानूनी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। बुरुंडी के पर्यावरण मंत्री इमानुअल नियोनकुरु की राजधानी बुजुम्बुरा में हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक उनकी हत्या नए साल के मौके पर रात 1 बजे के करीब की गई। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिनभर रेडियो के साथ साथ बीबीसी हिंदी.com और मोबाइल पर लाइव और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। जैसा आपने अभी अभी समाचारों में सुना, पिछले कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के भीतर चल रहे संकट का अंत अब पार्टी के संभावित विभाजन के रूप में सामने आ गया है। राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव की ओर से बुलाए गए राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई और पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने इस सम्मेलन को असंवैधानिक बताते हुए 5 जनवरी को फिर से राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया है। इस बीच मुलायम और शिवपाल यादव का गुट अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की भी तैयारी कर रहा है। सुनिए समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
ये अधिवेशन सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है और ये पूरा प्रस्ताव सुन लीजिए और उन्हें ये अधिकार देता है।
समाजवादी पार्टी में युग परिवर्तन यानी जनरेशन चेंज की ये ऐसी घोषणा थी जिसमें घोषणा करने वाले रामगोपाल यादव और नए बनाए गए अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद के बुलाए सम्मेलन में एक साथ आए थे। जिस मौजूदा अध्यक्ष की जगह नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जा रही थी उसने ठीक 2 घंटे पहले इस सम्मेलन को पार्टी संविधान के खिलाफ कहकर खारिज कर दिया था। हालांकि घोषणा में पार्टी की नींव डालने वाले और उसे खड़ा करने वाले मौजूदा अध्यक्ष और नए अध्यक्ष के पिता यानी मुलायम सिंह यादव को पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया, उन्हें पार्टी में उनकी जगह भी बता दी गई।
समाजवादी पार्टी के विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन की राय है कि माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को स्थापित कर ऊंचाइयों तक पहुँचाया है, उन्हें समाजवादी पार्टी का सर्वोच्च रहनुमा माना जाए और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करता रहे।
वही मुलायम सिंह के छोटे भाई और कभी समानांतर मुख्यमंत्री के तौर पर समझे जाने वाले शिवपाल यादव को भी वरिष्ठता का एहसास करा दिया गया।
ये अधिवेशन प्रस्ताव करता है कि श्री शिवपाल सिंह यादव को उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष पद से तत्काल हटा दिया जाए और श्री अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से तत्काल निष्कासित कर दिया जाए।
रामगोपाल यादव की ओर से इसे पार्टी का आपात राष्ट्रीय सम्मेलन बताया गया था। इस घोषणा के बाद अखिलेश यादव ने जैसे अपनी ओर से इन सब की पुष्टि कर दी।
ये पूरा अधिवेशन इस बात को जान ले और मान ले इस बात को कि मैं जितना नेताजी का सम्मान पहले करता था उससे कई गुना ज्यादा है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान मैं करूंगा। अगर नेताजी के खिलाफ साजिश हो, पार्टी के खिलाफ साजिश हो, तो नेताजी का बेटा होने की वजह से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, साजिश करने वालों के खिलाफ हम खड़े हों।
लेकिन राजनीति के मजे खिलाड़ी कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव शायद खुद को मार्गदर्शक की भूमिका तक सीमित करने के मूड में नहीं है। इस सम्मेलन को तो पहले ही खारिज कर चुके थे, अब 4 दिन बाद यानी 5 जनवरी को उसी जनेश्वर मिश्र पार्क में फिर से समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन बुला लिया है। पार्टी अब 2 धड़ों में तो बंट गई है लेकिन असली समाजवादी पार्टी को लेकर असमंजस बना हुआ है। शिवपाल यादव के खेमे से ऐसा कहा जा रहा है कि वो आज के राष्ट्रीय सम्मेलन की घोषणा को कोर्ट में ले जाएंगे और चुनाव आयोग में भी शिकायत करेंगे, यानी विभाजन के बाद भी पार्टी का संकट खत्म हुआ नहीं लगता। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और अब सीधे चलते हैं लखनऊ BBC संवाददाता नितिन श्रीवास्तव के पास जो इस वक्त समाजवादी पार्टी मुख्यालय के पास मौजूद हैं। नितिन, पहले बेटे अखिलेश ने खुद को पार्टी का अध्यक्ष घोषित किया और फिर पिता मुलायम ने इसे पार्टी संविधान के विरुद्ध बताते हुए 5 जनवरी को अधिवेशन का ऐलान किया है। काफी गहमा गहमी भरा दिन रहा, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप वहाँ?
अमरेश, यहाँ पर ताजा हालात ये हैं कि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के आम कार्यकर्ता हैं, दरअसल उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि पार्टी में हो क्या रहा है, क्योंकि ज्यादातर कार्यकर्ताओं से जिनसे हमारी बात हो रही है यहाँ पर, वो ये उनको ये उम्मीद थी कि आज जो ये आपातकाल अधिवेशन बुलाया गया था रामगोपाल यादव द्वारा, उसमें ये कहा जाएगा कि शायद अखिलेश एक वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे, उसमें निष्कासन और शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष से हटाए जाने का जो घोषणा हुई है उससे ये थोड़ा सदमे में भी है। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश हमारे नेता हैं, मुलायम भी हमारे नेता हैं, तो अभी सभी कोई नेता है। दरअसल ये है कि ये लोग अभी सदमे में है कि हो क्या रहा है पार्टी में। दूसरी बात ये कि पार्टी में जो कलह है वो सड़कों पर आ रही है, ऐसा बहुत दिनों बाद मैंने पहली बार जो है देखा है। और समाजवादी पार्टी में खासतौर से जहां पर जो फैमिली है, जो यादव परिवार है, उसका एक तरह से एक छत्र राज रहा है पार्टी पर, कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर विक्रमादित्य मार्ग पर जो पार्टी कार्यालय है वहां पर दोनों समर्थकों में, शिवपाल यादव और अखिलेश के समर्थकों में लिटरली हाथापाई हुई है। मतलब लोगों के कपड़े फटे हैं, लोगों के बाल के लोग समर्थकों को खींचा है। और वजह थी कि कथित तौर पर शिवपाल यादव की जो प्लेट थी, नेम प्लेट थी, उसको पार्टी कार्यालय से दिन में आफ्टरनून में निकाल दिया गया। तो अभी मुझे लगता है कि पार्टी के भीतर ही राजनीति बहुत ज्यादा विकराल सा रूप ले सकती है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन श्रीवास्तव लखनऊ से। आप नजर बनाए रखिए, हम आपके पास सुबह के कार्यक्रम में दोबारा लौटेंगे। लगभग दो हिस्सों में बंट चुकी समाजवादी पार्टी में अब आगे का घटनाक्रम क्या हो सकता है, यही जानने के लिए थोड़ी देर पहले मैंने बात की लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी से।
देखिए, हालात बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी दो धड़ों में बंट गई है। मुलायम सिंह यादव ने अध्यक्ष पद छोड़ा नहीं है और अखिलेश दावा कर रहे हैं कि वो अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। जहां तक जो पार्टी का संविधान है, आमतौर पर ये माना जाएगा कि ये जो सम्मेलन बुलाया गया था वो नियमानुसार है या नहीं, इस पे काफी विवाद होगा और ये विवाद अंत में जाके चुनाव आयोग में इसका परीक्षण होगा। और चुनाव आयोग में चूंकि ये एक क्वैसी जुडिशियल कार्यवाही होती है, यानी दोनों पक्षों की सुनवाई होगी, रिकॉर्ड तलब किए जाएंगे कि कितने विधायक, कितने सांसद, कितने पिछले विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार, कार्यकारिणी के कितने सदस्य किधर हैं, और तब चुनाव आयोग ये इस नतीजे पे पहुंचेगा कि वास्तव में कौन असली समाजवादी पार्टी है। तो उस प्रक्रिया के दौरान एक संभावना ये है कि चुनाव चिन्ह साइकिल जब्त कर लिया जाए।
चुनाव चिन्ह जब जब्त हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या विकल्प रह जाएंगे अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव के पास?
देखिए, उसमें एक तो विकल्प ये है कि चुनाव आयोग ये कहे कि दोनों जो स्वतंत्र निशान है उनमें से कोई एक टेम्पररी तौर पर ले लें, अस्थायी तौर पर। दूसरा विकल्प अखिलेश यादव के पास ये भी है कि कोई पहले से स्थापित जो पार्टी चल रही हो उसको एडॉप्ट करने और उसके निशान पे लड़े। ऐसा कि सुना जाता है कि चंद्रशेखर जी की बनाई समाजवादी जनता पार्टी जिसका बरगद निशान है, उससे कुछ बातचीत चल रही है अखिलेश यादव की।
अखिलेश यादव ने नया राज्य का अध्यक्ष पार्टी का चुन लिया है और नरेश अग्रवाल को पार्टी से निकाल दिया गया है। घटनाक्रम काफी तेजी से बदल रहे हैं और ज्यादातर जो विधायक हैं वो अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में मुलायम सिंह यादव काफी कद्दावर नेता हैं, उनका आप कैसा भविष्य देखते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं वो?
देखिए, सत्ता में बड़ी ताकत होती है और चुंबक का काम करती है, तो बहुत सारे लोग जिनको सत्ता से लाभ मिलता है वो अभी अखिलेश यादव के साथ हैं। लेकिन इससे पार्टी नीचे तक बटेगी, ब्लॉक लेवल तक, गांव-गांव दो धड़े हो जाएंगे। जिन लोगों को अखिलेश अपने साथ नहीं रखेंगे वो मजबूरी में मुलायम सिंह यादव या शिवपाल यादव के साथ जाएंगे। और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि इस बार जो झगड़ा होगा वो पूरी मुलायम बेल्ट में घमासान होगा। और ये ध्यान रखने की बात है कि यूपी में जो सरकार बनती बिगड़ती है वो 3-4% मतों के अंतर से बनती बिगड़ती है। तो ये निर्भर करेगा कि अखिलेश यादव क्या अकेले चुनाव लड़ते हैं या जैसा कि अनुमान है कांग्रेस या लोक दल के साथ मिलकर लड़ते हैं। अगर वो कांग्रेस लोक दल के साथ मिलकर लड़ते हैं तो उनको 150-200 सीटें छोड़नी पड़ेंगी और फिर वहां पर मुलायम का पलड़ा उन सीटों पर भारी हो जाएगा। फिर उनके साथ जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो चले जाएंगे, जैसे कि एक बार हुआ था जब कांग्रेस ने बीएसपी से तालमेल किया था, 300 सीटें कांग्रेस ने बीएसपी के लिए छोड़ी थी और वहां कांग्रेस के सपोर्टर फिर बीजेपी में या दूसरे दलों में चले गए थे।
ये थे लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी। पिछले कई दिनों से आप बीबीसी हिंदी के वर्षांत कार्यक्रम सुन रहे हैं। आज हम इन प्रस्तुतियों के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आज सुनिए साल 2016 में खेलों के आसमान पर कौन कौन से खिलाड़ी सितारा बनकर चमके और रोशन किया देश का नाम। पेश कर रहे हैं आदेश कुमार गुप्त।
साल 2016 बीत गया और बीते साल सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई और लोढ़ा समिति का टकराव गूंजता रहा। कुश्ती में नरसिंह यादव क्यों और कैसे डोप का शिकार हुए ये पहेली आज तक नहीं सुलझी, तो सुरेश कलमाडी और अभय चौटाला को आजीवन अध्यक्ष बनाना भारतीय ओलंपिक संघ पर भारी पड़ा और खेल मंत्रालय ने उसे अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। लेकिन इससे परे खेलों में बहुत कुछ ऐसा हुआ जहां भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से धूम मचाई। आज चर्चा उनकी कामयाबी पर। नमस्कार, मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत दुनिया के सबसे बड़े खेल मेले ओलंपिक से। रियो में जब 100 से ज्यादा भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेने के लिए पहुंचे, तो शायद ही किसी ने सोचा हो कि भारत को केवल 2 पदकों से संतोष करना होगा और ये पदक उन खिलाड़ियों के नाम होंगे जिन पर कोई भी दाव नहीं लगाता। लेकिन कारनामा हुआ और वो 2 पदक मिले महिला पहलवान साक्षी मलिक और महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को।
वैसे बैडमिंटन में सबसे अधिक उम्मीदें साइना नेहवाल से थी। पिछले लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल ने रियो ओलंपिक से पहले जिस अंदाज में दुनिया के धुरंधर खिलाड़ियों को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, उसके बाद उनके आलोचकों को भी यकीन हो चला था कि वो कम से कम कांस्य पदक तो जरूर जीतेंगी। लेकिन खराब फिटनेस के कारण उनकी चुनौती ग्रुप स्टेज में ही यूक्रेन की मारिना ओलितीना से 21-18, 21-19 से हार कर टूट गई। दूसरी तरफ पीवी सिंधु ने ग्रुप स्टेज में ही हंगरी और कनाडा की खिलाड़ी को मात देकर एलिमिनेशन राउंड में चीन ताइपे की ताई जू यिंग को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने चीन की वांग यान और सेमीफाइनल में जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराकर फाइनल में जगह बनाई। लेकिन फाइनल में स्पेन की कैरोलिना मारिन ने कातिलाना खेल दिखाया और सिंधु कड़े संघर्ष के बाद 19-21, 21-12, 21-15 से हार गईं।
मेरा फर्स्ट ओलंपिक्स है तो आई डिडंट थिंक दैट आई वुड गेट अ मेडल, बट देन आई एम रियली वेरी सैटिस्फाइड विद सिल्वर एंड बहुत फॉट किया था, पर कैरोलिना भी बहुत अच्छा खेली एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट हर। एंड व्हेन इट कम्स टू द फाइनल्स, इट वाज लाइक एनीबॉडीज गेम, फर्स्ट ओलंपिक्स और मैंने मेडल जीती, तो इट इज अ डिफरेंट फीलिंग।
जबकि इससे पहले तमाम निराशा के बीच 58 किलो भार वर्ग में भारत की साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीतकर रियो में भारत का खाता खोला। वैसे तो साक्षी मलिक क्वार्टर फाइनल में ही रूस की वालेरिया कोबलोवा से 9-2 से हार चुकी थी, लेकिन कोबलोवा के फाइनल में पहुंचने से साक्षी को रैपचेज मुकाबले खेलने का अवसर मिल गया, जिसका लाभ उठाते हुए उन्होंने पहले तो मंगोलिया की पूर्व दोर्जिन उरखोन को 3-1 से मात दी और उसके बाद कांस्य पदक के मुकाबले में किर्गिस्तान की आइसुलू टिनिकोवा को 8-5 से हराया।
कहीं ना कहीं ये था कि अभी तक इंडिया ने मेडल की शुरुआत नहीं की है, तो मैंने ये करके दिखाया। रशिया वाली बहुत अच्छी प्लेयर है, तो मुझे 100% था ये फाइनल में जाएगी, मुझे मौका मिलेगा। लास्ट तक ये था कि लड़ना है, मेडल लेना है।
अब जिन्हें पदक मिले उनकी तारीफ भी हुई, लेकिन सुर्खियां और तालियां महिला जिम्नास्ट दीपा कर्मकार ने भी बटोरी। हालांकि वो बेहद मामूली अंतर से चौथे स्थान पर रही। दीपा कर्मकार उत्तरी कोरिया, स्विट्जरलैंड, रूस, उज्बेकिस्तान, कनाडा और चीन की खिलाड़ियों के बीच अपना लोहा मनवाने में कामयाब रही।
मेरे सपना पूरा ही नहीं हुआ, मैं तो आई थी इधर शायद मेडल लेना, पर मैं वो फोर्थ में हो गई तो अलग बात है। मेरे सर ने बताया बेटा अपना अच्छा देने की कोशिश कर।
और उसके बाद रियो में ही पैरालंपिक खेलों का आयोजन हुआ। अपने बुलंद हौसलों के दम पर पैरालंपिक खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। सबसे पहले तो पुरुषों की हाई जंप T42 स्पर्धा में मरियप्पन थंगवेलु ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का तिरंगा रियो में फहराया।
All eyes on this event at the moment. Nothing else going on in the stadium except this high jump. It's over!
भारत की ये खुशी तब दोगुनी हो गई जब हाई जंप T42 स्पर्धा में ही भारत के तरुण सिंह भाटी ने भी कांस्य पदक अपने नाम किया।
इसके बाद भारत की दीपा मलिक ने महिलाओं की शॉट पुट F53 स्पर्धा में रजत पदक जीतकर एक नया इतिहास बनाया।
कोई भी खिलाड़ी तो उसकी हार्दिक इच्छा यही रहती है कि ओलंपिक खेले। कहीं ना कहीं दिल में बहुत ज्यादा चाह थी ओलंपियन या पैरालंपियन शब्द मेरे नाम के साथ जुड़े और जो खेलों का मुकुट है जिसे हम ओलंपिक लेवल स्पोर्ट्स कहते हैं वो भी हिस्सा बने मेरी इस जर्नी का, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए मैं ये मेडल जीत पाई।
और अंत में भारत को पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में देवेंद्र झाझरिया ने स्वर्ण पदक दिलाया।
2004 में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ मैंने गोल्ड मेडल लिया, अभी जो रियो में गोल्ड मेडल लिया, मानता हूँ मैं रियो वाला गोल्ड मेडल मेरा उससे भी बड़ा है, क्योंकि उस टाइम देवेंद्र सिर्फ 23 साल उम्र थी, आज देवेंद्र की 35 साल उम्र है और वो 23 साल वाले का रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
इधर भारत में भी क्रिकेट की दुनिया के सबसे छोटे प्रारूप 2020 के ICC रांची विश्व कप का आयोजन हुआ। मेजबान भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे चैंपियन बनने के लिए मैदान में उतरी, लेकिन फटाफट क्रिकेट का बादशाह बना वेस्ट इंडीज। यहां तक कि उसकी महिला टीम भी पीछे नहीं रही और चैंपियन बनी। वेस्ट इंडीज के सामने जीत के लिए 156 रनों का लक्ष्य था, जो उसने कार्लोस ब्रैथवेट केवल 10 गेंदों पर बनाए गए नाबाद 34 रन की मदद से 19.4 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल किया।
कार्लोस ब्रैथवेट, रिमेंबर द नेम, हिस्ट्री फॉर द वेस्ट इंडीज। व्हाट अ मैच वी हैड हियर एट ईडन गार्डन्स। 24 फ्रॉम 4 डिलीवरीज एंड द वेस्ट इंडीज विन बाय 4 विकेट्स इन 2016। मार्लन सैमुअल्स।
इस विश्व कप में भारत का अभियान भी वेस्ट इंडीज ने ही सेमीफाइनल में समाप्त किया था। इससे पहले भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 4-1 से गवाई। भारत ने बस आखिरी मैच जीता, वो भी जीत के लिए 331 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए। रोहित शर्मा के 99 और मनीष पांडे के नाबाद 104 रन की मदद से भारत ने जीत का लक्ष्य केवल 2 गेंद बाकी रहते हासिल किया।
स्टाइल के साथ मैच को जिता दिया है मनीष पांडे ने, और यहां पे एक रिकॉर्ड भी बनाया भारत ने। पहली बार ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 300 से अधिक रन बना के मैच जीता है भारत ने या किसी भी टीम ने।
धोनी ने इस जीत में भाग्य को माना, लेकिन अपनी व्यथा भी इन शब्दों में व्यक्त की।
थोड़ा लक आपको चाहिए होता है, स्पेशली जब आपको टेबल टर्न करते होते हैं। एक अच्छा विन है हमारे लिए, बाकी भी खेलने ही आए नो, ऐसा थोड़े कि मैं नीचे वहाँ बैटिंग करता हूँ तो मेरे पे वो टीका लगा हुआ है कि यार ये बैटिंग कर रहा है जीत गया मैच। इट डजंट हैपन लाइक दैट, यू नो। आपको अगर कोई अच्छा यॉर्कर डाल रहा है तो अच्छा यॉर्कर डाल रहा है, आप यॉर्कर को छक्का नहीं मार सकते।
इसके बाद भारत ने जिम्बाब्वे से उसी की जमीन पर एक दिवसीय श्रृंखला एक तरफा रूप से 3-0 से जीती, और इसके बाद भारत ने अपनी ही जमीन पर न्यूजीलैंड को 5 मैचों सीरीज में 3-2 से हराया। आखिरी मैच में शायद ही किसी को उम्मीद रही होगी कि भारत इतनी आसानी से जीतेगा। जीत के लिए 270 रनों की तलाश में पूरी न्यूजीलैंड की टीम केवल 79 रन पर ढेर हो गई। जीत के हीरो रहे अमित मिश्रा, जिन्होंने पूरे मैच में 5 विकेट झटके।
वेल अमित, मेनी कांग्रेचुलेशंस, क्या बात है, दिवाली क्रिसमस साथ में आ गया।
बिल्कुल आ गया, और इंडियन टीम के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से मैंने परफॉर्म किया। शुरू के 2 ओवर मैं थोड़ा सा टेंस था, बट एमएस भाई आए मेरे पास, उन्होंने कहा अपना खुल के बॉल डाल और विकेट के लिए बॉल दे जैसे तू डालता है, और वो डालना जब स्टार्ट हुआ तो विकेट मिलने स्टार्ट हुए। तो मैं ये कहूंगा कि पूरी टीम का और एमएस भाई ने जो टिप्स दिया उससे विकेट मिले।
लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भारत की पो 12 रही। पहले तो विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने वेस्ट इंडीज को 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 से मात दी, और इसके बाद भारत ने अपनी ही जमीन पर न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज में 3-0 से हराया। तीसरे टेस्ट मैच में तो विराट कोहली ने दोहरा शतक भी बनाया। भारत 321 रन के विशाल अंतर से जीता। इतना ही नहीं, इस जीत के साथ ही भारत टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 टीम भी बन गई और उसे टेस्ट गदा भी मिली।
Well, many congratulations. I'd like to ask the Indian team, invite the Indian team to come up here and share the mess with Virat Kohli.
Trust me, I've got a few Man of the Match awards, so have the boys, but when they hold this, I think it's going to be a really special thing. The last time when the team got the mace, I saw from home. Now I'm able to hold it as captain, so very proud moment.
और साल का अंत तो भारत ने और भी दमदार अंदाज में किया, और इंग्लैंड को भी अपने ही घर में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 4-0 से मात दी। आखिरी टेस्ट मैच में तो भारत ने इंग्लैंड को 1 पारी और 75 रन से हराया। करुण नायर ने 303 रनों की यादगार पारी खेली। विराट कोहली अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन से खुद हैरान नजर आए।
राहुल हैं, करुण नायर हैं, ये लोग स्पेशली करुण नायर, बाकी 300 रन बनाना मतलब उससे बड़ी स्टेटमेंट वो नहीं दे सकते थे अपने लिए। जितने यंगस्टर्स हैं इनको देख के कभी कभी हैरानी होती है कि मतलब इन्होंने पिक अप थिंग्स वेरी वेल।
आर अश्विन को भी पूरे साल किए गए दमदार प्रदर्शन का इनाम ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में मिला। उन्होंने इस साल 8 टेस्ट मैचों में 2 शतक की मदद से 336 रन बनाए और 48 विकेट झटके। उन्होंने 19 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 27 विकेट भी हासिल किए। आर अश्विन मानते हैं कि ये टीम का नया दौर है।
वी हैड अ ग्रेट ट्रांजिशन एवर सिंस महेंद्र सिंह धोनी हंग हिज बूट्स लास्ट ईयर इन ऑस्ट्रेलिया। वी हैड अ ट्रांजिशन, द कैप्टन हैज टेकन ओवर, अ यंग कैप्टन, and we actually fell on the right track, and we have a great bunch of boys now. I would also like to dedicate it to the entire team and to the support staff.
वहीं मुक्केबाजी के रिंग में भारत के विजेंद्र सिंह छाए रहे. बीजिंग ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता विजेंद्र सिंह ने पेशेवर मुक्केबाजी में तंजानिया के पूर्व विश्व चैंपियन फ्रांसिस चेका को तीसरे ही राउंड में नॉकआउट कर अपने WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडिलवेट खिताब का बखूबी बचाव किया. आज विजेंद्र सिंह खुश हैं कि उनके पेशेवर मुक्केबाज बनने के फैसले को सबका समर्थन मिल रहा है.
After 1:56 of the third round, the referee calls a halt to the contest, meaning the winner in the blue corner, and still the WBO Asia Pacific Super Middleweight Champion, Bajinder
Singh. जब मैंने फैसला लिया था जो प्रो बॉक्सर बनने का, उस टाइम पे बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी, न्यूज में बड़ा बुरा बुरा आया था, लेकिन जब मैंने टाइटल जीता तब हर एक बंदा खड़ा होकर मेरे लिए तालियां बजा रहा था. तो यस, आई वाज इमोशनल दैट टाइम. जी हाँ.
साल जाते जाते भारतीय जूनियर हॉकी टीम को भी तब खुशियां दे गया जब वो दुनिया की 16 टीमों के बीच विश्व चैंपियन बनकर उभरी. लखनऊ के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेले गए पुरुषों के जूनियर विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने यूरोप की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक बेल्जियम को 2-1 से मात दी. और जब टीम विश्व चैंपियन बने तो फिर कप्तान की खुशी का ठिकाना कैसे रहे. हरजीत सिंह बोले,
वैसे हमको इसी दिन के लिए इंतजार था, 18 दिसंबर के लिए. हम बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं. सबसे पहले थैंक यू लखनऊ. Thank you.
इससे पहले भारत की सीनियर हॉकी टीम ने अपने इतिहास में पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई, जहां वो ऑस्ट्रेलिया से पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हारी. लेकिन उसने एशियन पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान को 3-2 से हराकर चैंपियन बनने का हक हासिल किया. भारत की महिला टीम ने भी फाइनल में चीन को 2-1 से हराकर एशियन महिला चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की. टेनिस में भारत के लिएंडर पेस ने मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर खेलते हुए फ्रेंच ओपन में मिश्रित युगल का खिताब जीतकर अपना करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया.
The mixed doubles with Leander Paes and Martina Hingis. These are the champions of the 2016 Roland Garros, the French Open.
सानिया मिर्जा ने भी मार्टिना हिंगिस के साथ खेलते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला युगल वर्ग का खिताब जीता. पीवी सिंधु ने मलेशिया मास्टर्स और चाइना ओपन जीता. गोल्फ में अदिति अशोक इंडियन गोल्फ टूर्नामेंट जीतकर यूरोपियन टूर का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी. इतना ही नहीं, पंकज आडवाणी ने छोटे प्रारूप में विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीतकर उनकी गिनती 16 की. पिछले साल भारत ने अहमदाबाद में आयोजित हुए कबड्डी विश्व कप को भी जीता. फाइनल में भारत ने ईरान को 38-29 से मात दी. और पिछले साल राजीव गांधी खेल रत्न बने बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, महिला पहलवान साक्षी मलिक, निशानेबाज जीतू राय और महिला जिम्नास्ट दीपा कर्मकार.
सुश्री दीपा कर्माकर को जिम्नास्टिक्स में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष 2016 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है.
तो ये था साल 2016 में भारतीय खिलाड़ियों के खेल का लेखा जोखा. कुछ छूट भी गया हो तो उसके लिए क्षमा करें. अब देखना है कि इस साल भारतीय खिलाड़ी अपनी कामयाबी का परचम कहां तक फहराते हैं.
हमारी वर्षांत प्रस्तुतियां आपको कैसी लगी, जरूर लिखिएगा अपनी राय. और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर.
बीबीसी समाचार. उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी में तकरार जारी है. महासचिव रामगोपाल यादव की ओर से आज लखनऊ में बुलाए गए राष्ट्रीय अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया गया और मुलायम सिंह यादव के लिए संरक्षक की भूमिका तय की गई. मुलायम सिंह ने एक पत्र जारी कर इस सम्मेलन को असंवैधानिक बताया है. तुर्की की पुलिस इस्तांबुल के नाइट क्लब पर हमला करने वाले व्यक्ति की तलाश कर रही है। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ दिन भर की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया दीपक जसरोटिया ने। अगर आप समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मुलायम सिंह के राजनीतिक भविष्य के बारे में विश्लेषकों की राय जानना चाहते हैं तो आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब अमरीश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।